بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ ان حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے، اور شہید اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں، عورتوں اور سن رسید افراد کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مصر کے توسط سے جنگ بندی کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون منگل کی شام تل ابیب پہنچے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے تل ابیب پہنچنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی بھرپور حمایت جاری رہے گی، اور امریکہ ایک پہاڑ کی مانند اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے اور اس کی پشت پناہی پوری طرح سے جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ایسی حالت میں تل ابیب کی بھرپور حمایت جاری رہنے کا اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے ان کی موجودگی میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پر زیادہ تباہ کن حملوں کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اسرائیل پر راکٹی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ غزہ سے اسرائیل پر راکٹی حملوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ انہوں نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں نہتے عوام، عورتیں اور بچے مارے جا رہے ہیں۔ مغربی حکومتیں، بالخصوص امریکی حکومت، تل ابیب کی بھرپور حمایت اور ہر طرح کی مدد کر رہی ہے، لیکن علاقے کی عرب حکومتیں اور اسلامی ممالک صرف زبانی جمع خرچ پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، اور ترکی نیز بعض عرب حکومتیں غزہ کے عوام کی مدد کرنے کے بجائے نہایت فخر کے ساتھ ثالثی کا کام کر رہی ہیں اور غزہ تک امریکہ اور اسرائیل کا پیغام پہنچا رہی ہیں، جبکہ اس وقت غزہ کو بھرپور مدد کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ کی ہر طرح کی مدد کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی تک مصر کی حکومت کی جانب سے ایرانی وفد کے سفر غزہ کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کے روز اپنے ایک اہم خطاب میں غزہ پر حملوں کو غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی درندگی کا ثبوت قرار دیا، اور اسلامی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ فلسطینیوں کی کسی بھی قسم کی مدد سے دریغ نہ کریں اور غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کی بھرپور کوشش کریں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بھی تمام عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ تک اسلحہ پہنچایا جائے تاکہ مظلوم فلسطینی اپنا دفاع کر سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں اس وقت بر صغیر کے ممتاز دانشور منظور رضوی صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضوی صاحب، السلام علیکم۔ رضوی صاحب، 8 دن سے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے غزہ پر جاری ہیں، جن میں اب تک 140 سے زائد بے گناہ اور نہتے عام شہری مارے گئے ہیں، ان حملوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھی سادھی بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آغاز گفتگو میں کہ عجیب یہ بات ہے، کتنا دنیا کا بڑا ظلم و ستم ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اگرچہ 60 برس سے اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور اسرائیلیوں کا مسلسل جبر جو ہے، ظلم جو ہے، قتل و غارت، یہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ लेकिन सितम की बात यह है कि जब उनका बाजार कत्ल व गारत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अचानक इसराइली अपने किसी मफाद वक्ती मफाद के तहत ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा ज़ोर शोर से शुरू करते हैं, तो फिर ये एक एहतजाज की लहर दौड़ पड़ती है। अवाम फिर जागते हैं, फिर उनको फ़लस्तीनी याद आते हैं, जब उनकी बच्चों की लाशें दिखाई जाती हैं टेलीविजन पर, मज़लूम मकूर और
जी
मजबूर बच्चों को दिखाया जाता है, तो फिर लोग जाग पड़ते हैं और फिर ये एहतजाज मुअसर हो या गैर मुअसर उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कितनी दुख की बात है कि एक वो मसला जिसमें जिसके बुनियाद ही इसी बात पर है कि लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, रोज़ाना जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन जो उसमें जब तेज़ी आती है तो फिर लोगों को ये पता चलता है कि फ़लस्तीन के नाम का भी कोई क़ज़िया मौजूद है, वहाँ भी जुल्म सितम का किस तरह बाज़ार गर्म हो रहा है, और हुकूक इंसानी के अलम बरदार इंसान जो है वो ख्वाब गफरत का शिकार हो चुके हैं। अब चूंकि जनवरी में नया इलेक्शन आने वाले हैं और ये जो मौजूदा वजीर आजम है नतन याहू, ये एक चाहता है कि इसकी कोलिशन की इसको जरूरत ना पड़े, इसको किसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मन्नतें न करनी पड़े अपनी हुकूमत बनाने के लिए। पर आपको पता है कि 25 बरस से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि इसने बरमला इस बात का इजहार किया है कि अगर इसे पूरी तरह पूरी ताकत मिल गई और पार्लियामेंट में इसकी अक्सरियत हासिल हो गई तो ये वो तमाम कारनामे जो ये शुरू से अपने दिल में लिए फिरता है, और जो मेनाखन बेगन जो इसका उस्ताद था, गुरु था, इसका मुर्शिद था, जो उसने बरमला लोगों के सामने कहा था कि हमारी मकसद सिर्फ यही नहीं कि मौजूदा इसराइल को, बल्कि वो चाहता था और उसकी ख्वाहिश रही कि इसको इतना तौसी कर दिया जाए, इसकी इसमें वसत ले लाई जाए, बल्कि 67 की वॉर के बाद, जंग के बाद जो इलाके बिल्कुल आ चुके हैं वो किसी को भी आज़ाद नहीं करना चाहता था, तो ये अपने उन अजायम की तकमील करना चाहता है। इलेक्शन देखकर उसके सामने ये तमाम मसाइल खड़े हो गए और वो चाहता है कि लोगों के अंदर वो मकबूलियत हासिल कर ले। और इधर अमेरिका वाले जो हैं वो तो जाहिर है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ ये नहीं कि इसराइलियों की मोहब्बत की बिना पर उनकी हर वक्त हिमायत के लिए तैयार रहती है, बल्कि वो ये समझती है कि इसराइली वही काम कर रहे हैं जो अमेरिकन खुद करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कुछ सस्ते दामों पे वो कर रहे हैं, तो इसलिए ये उनकी एक दरअसल सियासत, ये उनकी रियासत है, जो इसराइल जो है अमेरिका की एक रियासत
जी
है, तोसी रियासत है, तो उसमें वो तमाम आलम इस्लाम को एक इख्तलात में बुहरान में मुबतला करने के लिए उन्होंने इसराइल का ये वजूद जो है वो आलम इस्लाम के अंदर पैवस्त करके रख छोड़ा है। अब इस बात इस जरूरत की है कि एक फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए एक मुस्तकिल मुज़ाहमत की पॉलिसी बनाई जाए और तमाम ज़राए और अबलाग को और पंफलेट छाप कर, लीफलेट छाप कर, लिटरेचर छाप कर तमाम दुनिया में इस बात को फैलाया जाए कि फ़लस्तीन का मसला जो है वह वक्ती नहीं है, ये एक मुस्तकिल नासूर है जो आलम इस्लाम के सीने में पैवस्त कर दिया गया है, ये एक मुस्तकिल मसला है जिससे रोज़ाना दरिंदगी और वहशत के कारोबार को तरक्की दी जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान रूलर्स हैं उनको ज़्यादा उन पर दबाव डाला जाए, चूँकि ये बात तो अजहर मिन अश्शम से इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है कि आलम इस्लाम के लोग जो है वो
जी
फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन आलम इस्लाम के हुक्मरान जो है वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म व करम करने वाले इसराइलियों के साथ हैं
जी
और
जी
इसराइल का आका जो है अमेरिका उसके साथ है, तो
जी
कोशिश ये की जाए कि आवाम के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए कि वो मुसलसल इस अपने हुक्मरानों को इस दबाव के अंदर रखें कि जिस तरह भी हो सके तमाम दुनिया के ज़रा इबलाग के अंदर लोगों के अंदर इस बात की आगाही पैदा की जाए, लोगों में ये शऊर पैदा किया जाए कि फ़लस्तीन का मसला जो वो वक्ती मसला नहीं एक मुस्तकिल मसला है। और आपने देखा होगा कि हुकूक निस्वानी के आलमबरदार जो हैं जिस तरह वो मगरबी बात इस बात की है कि मगरबी ममालिक के अंदर इस शऊर को आम किया जाए, इस एहतजाज को यहाँ मुअसर किया जाए, क्योंकि ये मगरबी ममालिक के लोग जो है इनकी आवाज़ के अंदर कोई बजाय यहाँ एक तहरीक चल पड़ी है कि उन लोगों को, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट दिया जाए कि जिनका मतमाह नज़र जो है या जिनका रवैया जो है वो इसराइल के बारे में इतना हमदर्दाना ना हो और वो फ़लस्तीन के मसले को भी समझते हैं, इसी तरह समझें, इसी तरह ये तहरीकें जो है मगरबी ममालिक में चलाई जाए, लोगों को शऊर उनका आम किया जाए कि फ़लस्तीन पर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है और जिस तरह यहाँ कुछ दिनों से हुआ कि इराक की जंग के खिलाफ एक कैंप लगाया गया वेस्टमिंस्टर में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, इसी तरह मगरबी बाल के बाकी दारुल हुकूमत जो है वहाँ भी एक मुस्तकिल तौर पर एहतजाज की सूरत नुमाया की गई है। और मैंने वनकूवर में और कैनेडा में भी देखा है कि वहाँ भी जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तंजीमें हैं उनके कोई ना कोई अलामती तौर पर कहीं ना कहीं हर वक्त एहतजाज का एक मौसर तरीका जारी रहता है। मेरे ख्याल में जब तक मगरबी ममालिक में इस मसले को पूरी तरह उजागर नहीं किया जाएगा और इसको जाहिर नहीं किया जाएगा और इस पर जोर नहीं दिया जाएगा और इस पर मुअस्सर तरीके से इसको नुमाया नहीं किया जाएगा तो लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचेगा। एक दिन में अखबार में पढ़ा जाता है, लाशें दिखाई जाती हैं, मसाइल सामने लाए जाते हैं, लोग उस पर एहतजाज करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि फ़लस्तीन के मसले को मुस्तकिल जगह दी जाए कि जिस तरह के वियतनाम में हुआ था, बिलाखिर अमेरिका के इस्तेमार को उसके सामने झुकना पड़ा। यही मसला अफगानिस्तान में भी हो रहा है, यानी जहाँ जहाँ इस्तेमारियत और जारहीत जारी रहती है, अगर मुस्तकिल उसकी मुदाफ़त की कोशिशें की जाएँ तो उसका नतीजा बरखेज़ होता है। अब आप ये देख लीजिए कि क्या जो सो कॉल जो अरब ममालिक के अंदर तहरीकें चली जिसके तहत मुबारक को निकाला गया, लीबिया में तब्दीली लाई गई, मराकश के अंदर जोर डाला गया, आजकल शाम के अंदर वो हो रहा है, यमन के अंदर एहतजाज हो रहा है, तो क्या वहाँ जो था वो मसला इससे ज़्यादा अहम था कि ये 2 साल के बच्चों को दहशतगर्द करार देकर, 3 माह के बच्चों को दहशतगर्द करार देकर और उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, तो क्या ये बात इससे ज़्यादा अहम नहीं थी कि जो वहाँ तहरीकें चली हैं, जिस तरह लोगों को वहाँ
जी जी
कुर्बान किया गया है, वहाँ तब्दीलियाँ ला गई हैं, क्यों लाई गई है? इसलिए
जी
लाई
बहुत
गई
बहुत
है
शुक्रिया
ना
रिजवी
कि
साहब।
लोगों का एहतजाज जो था वो मुअसर साबित हुआ, लोग उठ खड़े हुए, उन हर किस्म की कुर्बानी दी और उन जालिम और गासिब हुक्मरानों को आखिर मुल्क बदर करके छोड़ा। इसी तरह अगर इसराइल के बारे में ये तासुर दुनिया में बरमला कायम कर दिया जाए कि इसराइल मजलूम कतई तौर पर नहीं है, उसको वजूद के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी हिफाजत के लिए इन नहते लोगों के पर जुल्म करना ज़रूरी नहीं है। अब आप देखिए दुनिया में ये तासुर क्याम किया जा रहा है कि एक तरफ इसराइल है, एक तरफ उसकी मुखालिफ है, तो दोनों जो वो एक पल्ले में उनको रख दिया जाता है
जी
और
शुक्रिया
ये
रिजवी
कहा जाता
साहब।
है कि जी सालसी हो रही है,
जी बहुत बहुत शुक्रिया।
मुसाहलत हो रही है। भाई मुसाहलत तो उन लोगों के दरमियान होती है जो बराबर के दो फरीक हों, जिनकी कुव्वत यकसा हो,
जी रिजवी
जिनकी
साहब, हम
ताकत
आपकी
यकसा
तरफ
हो,
आएंगे
जिनका
दोबारा।
मतमय नजर एक सा हो, उसके अंदर सारसी की
जी
जाती है।
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। और नाज़रीन, हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से हमारे नुमाइंदे सिप्त हसन ने गज़ा की सूरत हाल के बारे में दो शख्सियात से गुफ्तगू की है और उनकी रिकॉर्डेड गुफ्तगू हमारे लिए इरसाल की है। राजा इफ्तिखार हुसैन, सदर बलती एसोसिएशन जम्मू कश्मीर और सीनियर सहाफी सनम एजाज की गुफ्तगू, मुलाहिजा फरमाएं गजा की सूरत हाल के बारे में।
गाज़ा के कत्लेआम से मुसलमानों के दिल मजरूह हो गए हैं और सबों को इस वक्त जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये कत्लेआम सिर्फ फ़लस्तीन का कत्लेआम नहीं है, ये मुसलमानों का कत्लेआम है। मुसलमानों का खून इतना अर्ज़ा नहीं है कि मुसलमान ममलिकत सोए रहें, ये हम सब की जिम्मेदारी है, खुसूसन उन ममालिक जो इस्लामी ममालिक होने का दावा करते हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस वक्त इस कड़ी हालात में, इस नाजुक हालात में फलस्तीनियों का साथ देना चाहिए।
दादा सुनो, जो कुछ गजा में हो रहा है, गजा में हुआ है, दुनिया की सबसे बदतरीन मिसाल उसमें कहीं नहीं मिल सकती है। इंसानियत के नाम पे इतना बड़ा जुल्म, दुनिया में मुसलमानों पे जितना जुल्म होता है दुनिया खामोश है, और कहीं दुनिया में देखें गैर मुस्लिम पे कहीं छोटी सी बात होती है पूरी दुनिया दहल उठती है, लेकिन मुसलमानों को काटा जाता है, कटवाया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अक्वाम आलम की बात करें और खासतौर पर मैं उन मुसलमानों की बात करूंगा, उन मुसलमान मुल्कों की बात करूंगा जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, बड़े अलमबरदार होने का दावा करते हैं, वो कहां खामोश हैं? क्यों खामोश हैं? सवाल उनके लिए है क्या मुसलमान एक साथ मिलकर इसका मुकाबला नहीं करते? एक जर्रे जैसा मुल्क इसराइल, साथ में अमेरिका का दुमछल्ला, और ये दुमछल्ला दुनिया भर को हिला रहा है, मुसलमानों को काट रहा है, और हमारे बड़े बड़े मुसलमान मुल्क जो अपने आप को बड़े अरबपति और खरबपति कहते हैं, उनका कहीं नाम नहीं सामने नहीं आ रहा है। मिलना चाहिए मुसलमानों को एक वक्त इसमें। मैं अक्वाम आलम में मुसलमानों पर ही सबसे बड़ी बात करूंगा, ये मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है, उन ममालिक की जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम अलमबरदार हैं इंसानियत के, हम अलमबरदार हैं मुसलमानों के, उन्हें चाहिए इकट्ठे हो जाइए और एक जरे चूंटी जितने बड़े मुल्क को मुल्क मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में मार गिराया जा सकता है। लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ी बात, बदनसीबी की बात है कि एकजुट नहीं हो रही। एक को आगे आना चाहिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, और इसको आगे आने के बाद हम कंपीट कर सकते हैं, वी कैन डू, हमें ताकत है, हमें है सब कुछ, लेकिन हम खामोश तमाशाही हैं।
जी नाजरीन, ये थे हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी सनम एजाज। रिजवी साहब, जनाब आपने सनम एजाज की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई होगी, मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सिलसिले में मुत्तहिद हों और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अख्तियार करें। इस वक्त मुसलमान मुल्कों ने गज़ा के हवाले से जो कुछ भी किया है उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं?
कतई तौर पर मुतमईन नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये सिर्फ मुसलमान मुल्कों का ही मसला नहीं है। यूँ देखा जाए तो जो लोग इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बनते हैं और इंसानी हकूक़ का प्रचार करते हैं, उसकी तबलीग करते हैं, उस नाम पर तमाम दुनिया में शोर मचाते हैं, ये उनका मसला भी है, क्योंकि ये इंसानी मसला भी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुसलमान मुल्कों के आवाम का इसलिए ज़्यादा इसका हक बनता है क्योंकि वो मुश्तरक है नज़रियाती तौर पर, मजहबी तौर पर, उनकी जो जज्बात है, उनकी वाबस्तगी जो है वो गज़ा के मुसलमानों से और फ़लस्तीन की मुसलमानों से ज़्यादा अहम है। लेकिन फिर वही बात है कि जहाँ जब ये मसाइल खड़े होते हैं तो सितम की बात यह है कि आवाम का दुख और होता है, आवाम की राय कुछ और होती है, आवाम के जज्बात जो हैं वो वारबतगी की हद तक गज़ा के मुसलमानों के साथ होते हैं, उनका दिल उनके दिल के साथ धड़कता है। जिस तरह के एक आम कहा जाता है और बात सही भी है कि मुसलमान तमाम जो है उम्मत मुसलमान एक वजूद की माने दे, जिस तरह के हदीस भी है, एक हिस्से को भी अगर दुख हो तो दूसरा हिस्सा उसको महसूस करता है। लेकिन सितम ये हो चुका है कि आवाम के जज्बात और हैं, महकूम लोग जो हैं उनके जज्बात अलग हैं, लेकिन मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान जो हैं इल्ला माशाअल्लाह, जिस तरह की इस्लामी जमहूरिया ईरान है और बाकी कुछ ममालिक हैं, जिस तरह की तुर्की के हुक्मरानों ने भी पिछले दिनों इस बात का मुजाहरा किया है कि आवाम के जज्बात और होते हैं लेकिन हुक्मरानों के जज्बात जो हैं वो कतई तौर पर गज़ा के मुसलमानों के साथ नहीं है, क्योंकि तमाम मुसलमान हुक्मरानों को अपने इक्तदार को बचाने की फ़िक्र है और उनके इक्तदार को बचने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो इस्तेमारी ताकतों की ग़ुलामी और उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। आप देख लीजिए कि जितने भी हुक्मरान हैं इल्ला माशाअल्लाह, वो तमाम के तमाम अमरीकी इस्तेमार और जमहूरी और इस्तेमारी ताकतों के वो मुहताज हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि अपने आकाओं को किसी तरह भी नाराज़ किया जाए या कोई ऐसी बात की जाए जिससे कि वो हों। और चूंकि इसराइल जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अमेरिका ने उसको तमाम आलम इस्लाम को बर्बाद करने के लिए और उन पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि वो दूर बैठे हुए हैं तो आलम इस्लाम के वस्त के अंदर, उनके सीने के अंदर एक खंजर पैवस्त किया हुआ है इसराइल के नाम से, इसलिए अमेरिका कभी भी, आपने देखा होगा कि हिलरी क्लिंटन जब पहुंची हैं परसों, जो उन्होंने वहाँ पहली तकरीर की है, तो उन्होंने सबसे पहला ये फिक्रा कहा है कि इसराइल की बका जो है वह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ है। सोचने की बात यह है कि क्या अमेरिका ये समझता है कि ये गज़ा के निहत्ते बच्चे जो हैं जिनके हाथों में गुलेले हैं और जिनके हाथों में से चंद संग्रेज़े हैं, क्या वो इसराइल के वजूद के लिए कोई ख़तरा साबित हो सकते हैं? यानी इसराइल जो टैंकों और जहाज़ों से उनको मिसमार कर रहा है, उनकी जगहों को, सारे उनके खित्ते को, लोग छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहा है, क्या वो इसराइल के वजूद के लिए कोई ख़तरा है? कतई तौर पर नहीं है। तो जो आपने सवाल किया है कि मुसलमान मुल्कों का क्या जो आवाम है, भाई आवाम जो है वो करते हैं एहतजाज जितना उनसे हो सकता है, लेकिन ये तो हुक्मरानों का मसला है कि वो उन कंपनियों का इक्तसादी बायकाट करें, मुकाता करें कि जो पुश्त पनाही कर रही हैं इसराइल की, और उन कंपनियों से वो ये बरबला कहें कि अगर तुमने इसराइल की हिमायत से हाथ ना खींचा یا ان مملکتوں سے جو اسرائیل کے لیے کلمہ ہر وقت اس کے لیے ان کی معاونت کے لیے کمر بستہ رہتی ہیں، ان سے یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ، یہ مستقل طور پر ایک مسلمانوں کا فلسطینیوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ صرف یہ دنیا کے مسلمان، دوسرے جو ہیں غیر مسلم، وہ بھی اس بات کو جب سمجھ پائیں گے کہ یہ مسئلہ وقتی طور پر نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ آج اسرائیل نے قتل و غارت چونکہ میں اس میں اضافہ کر دیا ہے اور 140 آدمی سے زیادہ کو شہید کر دیا ہے، اور چونکہ ان کے الیکشن آنے والے ہیں اس لیے وہ اس بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں.
جی
تو ہونا یہ چاہیے کہ عوام کے جذبات جو ہیں ان کو مؤثر صورت دی جائے. اس کے لیے ذرائع اور ابلاغ والوں سے پوری طرح ہر وقت اور ہمہ وقت اور ہمہ جہت رابطہ رکھا جائے. تمام دنیا کے ان مؤثر اداروں تک یہ آواز ہمیشہ پہنچتی رہے کہ یہ عوام، فلسطین کے عوام جو ہیں ان پر یہ مسلسل ظلم ہو رہا، اور یہ ظلم جو ہے ایک روز کا نہیں ہے، ایک دن کا نہیں ہے، ایک ہفتے کا نہیں ہے، یہ 60 برس سے اوپر کی کہانی ہے، یہ ایک طویل داستان ظلم ہے. اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ استعماری طاقتیں جو ہیں وہ صرف تجارتی زبان سمجھتے ہیں. اخلاقی باختگی کا ان کا یہ عالم ہے کہ وہ قطعی طور پر اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی کہ شہید کس طرح کیے جا رہے ہیں، بچے کس طرح نہتے لوگوں پر، بالکل جو غیر مسلح افراد ہیں ان کو بھی تہ تہ کیا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقل بنیادوں پر عالم کو اس بات سے شعور دیا جائے، آگاہی دی جائے کہ فلسطینیوں کا مسئلہ جو ہے وہ ایک مستقل انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور اس کے ان کے دفاع کے لیے، ان کے حقوق کی بحالی کے لیے مؤثر کوششیں بروئے کار لائی جائے.
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب سے. قندیل عباس صاحب، السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جناب، غزہ پر صہیونی حکومت کے موجودہ حملوں کا ہدف کیا ہے؟
دیکھیے، غزہ میں جو اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اس میں ان حملوں سے پہلے کی اگر صورتحال دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فلسطینی قیادت کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ اس وقت فلسطین کو یونائیٹڈ نیشن میں صرف آبزرور سٹیٹس دیا گیا ہے، یعنی وہ یونائیٹڈ نیشن میں بیٹھ کر صرف آبزرو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو فلسطینی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سے ایک سٹیپ آگے جانے کی وہ بات کریں گے، اور وہ آگے جانے کی جو بات تھی وہ نان ممبر آبزرور سٹیٹس ہے، یعنی ممبرشپ تو کمپلیٹ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس سے ایک اپر سٹیپ ہوتا ہے جو نان ممبر آبزرور سٹیٹس کا ہوتا ہے. لیکن نان ممبر آبزرور سٹیٹس اگر میجارٹی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مل جاتی ہے، جو کہ ملنے کا کبھی امکان اور ہے، اس صورت میں جب یہ سٹیٹس اگر فلسطین کو مل جاتا ہے تو اس کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ عالمی اداروں میں جا کر اپنا کیس کرے، اور عالمی ادارے کے پابند ہو جاتے ہیں کہ وہ فلسطین کے کیس کو قانونی طور پر سنیں. جبکہ اس وقت جو آبزرور سٹیٹس صرف فلسطین کو دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ براہ راست جو عالمی ادارے ان سے رابطہ نہیں کر سکتا، ان سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتا. اب جو مغرب کی لبرل ڈیموکریسی ہے، اس کی بنیادی اصولوں میں یہ ہے کہ طاقت کے زور پر کوئی بات نہ منوائی جائے، اور اگر بات منوانی ہے تو وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کی جائے. ظاہر ہے کہ فلسطینی ایک عرصے سے اپنی ریاست، کھوئی ہوئی ریاست کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اتنا بڑا علاقہ وہ مقبوضہ ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سے ایریے میں بھی وہ فلسطینی ریاست پر کسی حد تک جب راضی ہوئے تو وہ ایک چھوٹا سا ایریا بھی ان کو نہیں دیا جا رہا. اب لبرل ڈیموکریسی یا مغربی جو نظام تھے، ان سے توقع تو یہ تھی کہ یہاں پر ایک پیسفل سولوشن لائیں گے، اور جو فلسطینیوں کی طرف سے ایک پیسفل اٹیمپٹ آئی ہے یونائیٹڈ نیشن میں نان آبزرور ممبر سٹیٹس کے لیے، اس کی وہ سپورٹ کریں گے. لیکن واضح طور پر اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اگر فلسطینی اپنے اس مطالبے سے پیچھے نہ ہٹے تو وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں گے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ فلسطینیوں کی طرف سے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، تو انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ حملے شروع کیے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ فلسطینی کا عالم پیدا کیا جائے، فلسطینی قیادت کو منتشر کیا جائے، اور فلسطین کا جو تھوڑا بہت سیاسی سٹرکچر بنا ہوا ہے उसको इनायतात का शिकार किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देखा कि जब इसका तबड़तोड़ एक अपनी हद तक फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया और रॉकेट हमले हुए, तो अब चूंकि ताकत का जवाब ताकत से देने की जो पॉलिसी है इसमें भी फिलिस्तीनियों की तरफ हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है, और मगरबी मुल्कों की तरफ से जो डिप्लोमेटिक प्रेशर आ रहा है वो मेन फिलिस्तीन के लिए है, और वो प्रेशर ये है कि तमाम जो अरब मुल्क हैं खासतौर पर सऊदी अरेबिया, मिस्र और बहुत से दूसरे मुल्कों को, उर्दन को ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को मजबूर किया जाए कि वो रॉकेट हमले बंद कर दें, लेकिन जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसराइल के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अब ऐसी सूरत में ये है कि नाते फिलिस्तीनी जो हैं उनके हाथ और पाँव बांध कर वो इसराइल के आगे इनको डालना चाहते हैं, नाते बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, और बिल्कुल अपने जो कानूनी हक के लिए जो लड़ रहे हैं और उस हक से भी लड़ने से महरूम करके उनको हाथ पांव बांध कर मैं समझता हूँ कि दरिंदा सिफत फिलिस्तीनी फौजियों के सामने डालना चाहते हैं, जिससे जाहिर है ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ ये कि मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरी आलमी बरादरी बिल्कुल खामोश है, और ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है, और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो जाहिर है जो आलमी इदारे हैं, मगरब की लिबरल डेमोक्रेसी है और मगरबी ताकतें, इनसे बिल्कुल बाकी दुनिया की जो सोसाइटीज है उनका एतमाद उठ जाएगा, और फिर रीजनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसा अफरा तफरी का आलम पैदा हो सकता है कि जिसमें लोग फिर अपने फैसले खुद करने की सोचेंगे और आलमी इदारों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ हिंदुस्तान के एक मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जनाब आप क्या कहते हैं कि गजा पर इस वक्त जो हमले जारी हैं उनका हदफ क्या है?
जनाब अली देखिए मुख्तलिफ अहदाफ हैं
जी,
एक या दो हदफ का मसला नहीं है। एक तो रिजवी साहब ने अभी फरमाया कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं जनवरी के महीने में
जी,
और जो हार्डलाइनर्स हैं उनके जो अभी इन गवर्नमेंट हैं उनको बड़ा मसला ये है कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है और वहाँ के इक्तसादियात से वहाँ के आवाम मुतमईन नहीं है, और सरकार के साथ ये अदब एतमाद ने वहाँ के जो ये अभी रूलर्स हैं नितिन याहू वगैरह इन सबको ये डर पैदा हो गया है कि वो दोबारा इकतदार में नहीं आएंगे। और सबसे आसान तरकीब होती है इकतदार को बरकरार रखने की कि कौमी मामलात और सिक्योरिटी के मामलात को आवाम के सामने अगर रख दिया जाए तो फिर वो मुल्क की मईशत, इकतसादियात और अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं और फौज के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो उसी टेक्टिक को अपनाने की कोशिश वहाँ पर इस वक्त की जा रही है, ये एक वजह है। दूसरी वजह अभी कंदील अब्बास साहब ने भी फरमाया, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन की जो रुकनियत का मामला है तो ये पूरी एक कोशिश है जो मैं समझता हूँ कि नाकाम हो रही है वो कोशिश भी कि फलस्तीन में फलस्तीन को रुकनियत ना मिले, उसके लिए आलमी बरादरी को ये बावर कराने की कोशिश कि फलस्तीन एक टेररिस्ट स्टेट है, दुनिया देख रही है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ कि अहदाफ के तौर पर वो एक बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर है गजा पट्टी में, यानी उनका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको तहस नहस कर दिया गया, उनका जो पुलिस का हेडक्वार्टर था उसको तहस नहस कर दिया गया, मीडिया की जो बिल्डिंग्स थी जो जिसमें खुद हमास का चैनल मौजूद था उसको तहस नहस कर दिया गया, वो बैंक जिसके जरिए से फौजों की सैलरी जाती है उस बैंक को तबाह कर दिया गया। इससे अंदाजा होता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर हमास के पास मौजूद है, एक बड़ा मकसद था उसको तबाह करना। इसके अलावा जो एक हदफ उनके सामने मौजूद है वो ये है कि देखिए एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि इसराइल की हुकूमत और इसराइल के जो भी ये ज़ायनिस्ट लॉबी है ये बेवकूफ लोग नहीं है, कुछ सोचे समझे बगैर कोई इस किस्म की हरकतें ये लोग नहीं करते हैं, काफी दूर तक के निशाने होते हैं। पिछले दो साल में सरहदों पर इसराइल की जो तब्दीलियां, सियासी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं, ये देखना इस वक्त बड़ा दिलचस्प होगा उनके लिए कि उन सियासी तब्दीलियों की हो जाने के बाद इसराइल हमास के लोगों को कितना सपोर्ट दुनिया से मिलता है उसे भी कहीं ना कहीं ये इवेलुएट करने की कोशिश है कि दुनिया में किस किस्म का रिएक्शन होगा इसराइली हमले के तहत। अब जबकि तमाम अहदाफ तकरीबन पूरे हो चुके हैं, तो अब कल रात से कुछ बात चल रही है कि सब जगबंदी की जाएगी और सब होगा, लेकिन इसके बावजूद अब देखिए उन्होंने नक्शे जारी कर दिए कि इन इन मोहल्लों से लोग बाहर निकल जाएं और इन पे हम हमला करने वाले हैं, और आज दिन में जो है आबादियों पर हमले हुए हैं इसराइल की तरफ से। तो एक तरफ बातचीत चल रही है, मिस्र के की हुकूमत बराह रास्त रबते में है, हिलरी क्लिंटन साहिबा वहां जाके बैठी हुई बात कर रही हैं, महमूद अब्बास साहब से भी और नितिन याहू साहब से भी, और दूसरी जानब ये हमले हो रहे हैं। एक और बात जो जहन नशीन रहनी चाहिए, अब तक 120 लोगों के करीब कैजुअल्टीज हुई हैं हमास में, हमास की कैजुअल्टीज पूरे मीडिया के सामने मौजूद हैं, लेकिन कोई ये देखने की कोशिश करे कि वो हमास जिसको टेररिस्ट कहा जा रहा है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, बाराक ओबामा भी ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से इसराइल के ऊपर हमला होता है और इसराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हासिल है और उसके तहत वो ये हमला कर रहे हैं, उनकी कैजुअल्टीज नहीं हो रही, इसराइल की जानिब कोई कैजुअल्टीज नहीं हो रही, जिनके ऊपर हमला होने का ऐलान किया जा रहा है कि इसराइल पर हमला किया जा रहा है उनके तो कैजुअल्टीज हो नहीं रही है, लेकिन हमास में 120 कैजुअल्टीज हो चुकी, ये कैसी अजीब बात है। यानी आज सारी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड मीडिया ने दिखाया है कि छोटे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी लोग ये देख रहे हैं कि पत्थरों के जरिए वो लोग जवाबी अपना दिफा कर रहे हैं, पत्थर फेंक के, कंकर फेंक के अपना दिफा कर रहे हैं और उस दिफा के मुकाबले में मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो ये अजीब बात है कि जो टेररिस्ट स्टेट जिसे कहा जा रहा है वो हमला कर रही है तो पत्थर से कर रही है, और जो दिफा करने वाली कुव्वत है वो अपने दिफा में मिसाइल दाग रही है। ये पहली बार इस दुनिया में शायद ये बात देखी जा रही होगी, और इसी से इसराइल को अब यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि गुज़िश्ता 2 साल में हालात बदल गए हैं। अब जो कुछ इसराइल कहेगा सारी दुनिया उसको तस्लीम कर लेगी, या जो कुछ अमरीका कहेगा सारी दुनिया उसको तस्लीम कर लेगी। अब वो हालात खत्म हो चुके हैं, अब उनकी सरहद पर मिस्र मौजूद है, उनकी सरहद पर तुर्की मौजूद है, और उन दोनों ने जिस तरीके से इस जंग के खिलाफ अपने बयान दिए हैं उससे उनकी आंखें खुलनी चाहिए। खुद ईरान ने जिस तरीके से इस मामले में पेशरफ्त की है, अब उनको बहुत साफ अंदाजा होना चाहिए कि हमास और फलस्तीन के लोग तनह नहीं है, उनके साथ पूरी वर्ल्ड ओपिनियन है, और मसला अब सिर्फ मुस्लिम ममालिक का नहीं रह गया, खुद हिंदुस्तान की सरकार ने भी अपना एक बयान जारी करके ये अपील की है कि जंगबंदी फौरन होनी चाहिए। ये ठीक है कि हम खुद अपनी हुकूमत के उस बयान से उतने मुतमईन नहीं है जितना जो बयान हमारी तरफ से जाना चाहिए, वैसा अभी गया नहीं है, लेकिन वो जाएगा, लेकिन सारी दुनिया ने जंगबंदी को फौरी जरूरत करार दिया है, और किसी ने अभी तक अमेरिका के सिवा ये नहीं कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो ठीक है। यहां ये बात भी ये जहन में रहनी चाहिए कि जो लोग बार बार ये बात कहते हैं कि यहूदी ये जो हमारे इसराइल की लॉबी है ये पिछलग्गू है अमेरिका की, मैं इसके बरक्स मानता हूं। आज सूरत हाल ये है कि खुद अमरीकी सरकार इजरायली सरकार की पिछलग्गू बन गई है, इस वक्त इजरायल कंट्रोल कर रहा है खुद अमरीका, अमरीकी इंतखाबात में जो ज़ायरिस्ट लॉबी प्ले करती है उससे अंदाजा हो जाना चाहिए। पूरी जो ये अमरीकी इकोनॉमी है वो इस ज़ायरिस्ट लॉबी के हाथों में है, और उस इकोनॉमी के चलते पूरा अमरीका उनके हाथों में है। तो इजरायल का पिछलग्गू अमरीका बना हुआ है, अमरीका का पिछलग्गू इजरायल नहीं है, और ये वजह है कि बगैर किसी मशवरे के हमला किया इसराइल ने, और उसके बाद बाराक ओबामा साहब ने कहा कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में इस हमले का जवाब देने का हक है। बहरहाल अहदाफ जो कुछ भी हो, आज दुनिया में फलस्तीन तनहा नहीं है बल्कि इसराइल तनहा पड़ता चला जा रहा है, और इस जंग ने, 8 दिन की जंग ने फिर एक बार बताया है कि इसराइल जो है फिर इस दुनिया के नक्शे पर तनहा होता जा रहा है, और किसी भी किस्म की जो जंगी जराइम का इर्तकाब इसराइल की जानिब से किया जा रहा है उसका जवाब अब देने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है, और तुर्की बतुर्की उनको जवाब दिया जाएगा अगर वो ये जमीनी फौज को भेजने की बात कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने इसको विथड्रॉ कर दिया, लेकिन भेज के देखें अगर ये जमीनी फौज भेजी और इस खत्ते में बदबनी फैलाने की कोई कोशिश इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर होती है, जिसका खदशा अभी पैदा हुआ था आप किसी हद तक कम हुआ है, तो यकीनी तौर पर इसका खमियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसराइल इस किस्म की अहमकाना हरकत करने की सरे दस्त कोई कोशिश करेगा नहीं, ये इसको इवेल्युएट करने के लिए एक पत्थर फेंक के देखा गया है 8 दिन की इस जंग के जरिए, और मुझे लगता है कि जंगबंदी आज या कल में ये हो जाएगी और इसराइल को सही अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा इन 8 दिनों में हो गया होगा।
जी तस्लीम रहमानी साहब, तल अबीब का दौरा अमरीकी वजीर खारजा हिलेरी क्लिंटन ने किया है, जहां उन्होंने पहुंचते ही इस बात का ऐलान किया कि अमेरिका पहाड़ की तरह इसराइल की पुश्त पे खड़ा है और उसकी भरपूर हिमायत जारी रखेगा और इसराइल की सलामती अमेरिका के लिए सबसे बड़ी तरजीह है। उन्होंने ये बयान दिया तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इसी के साथ अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून साहब भी तल अबीब पहुंचे और उन्होंने सहूनी हुकूमत के वजीर आजम नेतन्याहू के साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा कि गजा से जो रॉकेट हमले किए जा रहे हैं उसकी वजह से इसराइल की जो सहूनी बस्तियां हैं उसके साकिनीन की नींदें हराम हो गई हैं, उनका सुकून गारत हो गया है और ये हमले किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है और ये रॉकेटी हमले बंद होना चाहिए। बान की मून साहब ने गजा से होने वाले रॉकेटी हमलों के बंद होने की जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन गजा पे जो रोजाना हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है, गोलाबारी हो रही है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या अक्वाम मुत्तहदा के सरबराह की हैसियत से उनका यह फर्ज नहीं बनता था कि वो गजा के अवाम की भी फिक्र करते और ये कहते कि गजा पर हमले बंद किए जाएं, इन हमलों में वहां औरतें, निहत्ते आम शहरी, बच्चे और सिन रसीदा अफराद मारे जा रहे हैं?
देखिए, हिलेरी क्लिंटन साहब का जो बयान आया है कल वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, उनको यही कहना है और जाहिर है कि वो खुद को पहाड़ कहें या हिमालय कहें उसके पीछे जो कुछ भी कहें, हमने कभी इसराइल को और सारी दुनिया ने कभी भी इसराइल को और अमेरिका को अलग करके देखा नहीं है। हम जब भी देखते हैं अमेरिका और इसराइल को एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ ही देखते हैं, तो हिलेरी क्लिंटन का मसला नहीं है। बान की मून साहब जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के पैसों से चलता है, जो यूनाइटेड नेशन के अखराजात सालाना हैं उसमें जो मेजर पेयर है वो अमेरिका है, और ये बात आधी सारी की सारी दुनिया ये बात भी इसी तरह जानती है कि यूनाइटेड नेशन माउथ पीस है अमेरिका का, यूएस और यूएन दोनों एक दूसरे के हलीफ हैं। तो बान की मून साहब को यकीनन, मुझे तो इसी बात पे हैरत है कि अगर वो इम्पार्शियल थे तो वो जाके नितिन याहू साहब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, वो उनको हमास में भी आके इस्माइल हानिया साहब के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है और यही असल में बोन ऑफ कंटेंशन है। मैं जो अभी अर्ज कर रहा था कि हमारी हुकूमत की जानिब से जो बयान गया वो बयान जो है वो काफी नहीं है, उसकी वजह मैंने वो यही है। मैं उस वक्त तफसील में नहीं गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से बयान जाता है कि पीएलओ को और नितिन याहू को, यानी इसराइल की सरकार और पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी को आपस में गुफ्तगू करके जंगबंदी करनी चाहिए। अरे भाई, हमास के लोग को आप साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? आप हमास को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? यह अजीबोगरीब बात है कि 2007 में इलेक्शन हो और पूरी की पूरी फलस्तीनी कौम हमास को अपनी हुकूमत की हैसियत से चुने और उसके बाद आप जो है ये तमाम इस्तेमारी कुव्वतें उस इलेक्शन को सेटिसाइड कर दें। यानी जमहूरियत का डंका पीटते हैं आप और अवाम जिसको हुकूमत दे के जमहूरी तरीकों से चुन रहा है उसी हुकूमत को आप, उसी जमहूरियत को आपको चूंकि सूट नहीं करती तो आपको लदम करार देंगे। और अगर बर्मा में हुकूमत को सेटिसाइड कर दिया जाए वहां की फौजी हुकूमत के साथ, तो यूरोपियन यूनियन वहां पर इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज कर देती है, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स सेटिसाइड कर दे हमास के इलेक्शन को तो सारी दुनिया खामोश हो जाती है। उसके बाद मुहासरा कर लिया जाए उसी हमास का कि जिसने अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक सरकार को चुना, उसको मुहासरा करके फिर उसको टेररिस्ट कह दिया जाए। आज तक 60 साल की तारीख में कभी भी फलस्तीनी तहरीक को टेररिज्म नहीं कहा गया। आज हमास को लेकर उस तहरीक को टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या सारी दुनिया आंखें बंद करके बैठेगी कि आज से 5 साल पहले तक जो तहरीक, जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक हुआ करती थी, वो 5 साल के अंदर टेररिज्म की तहरीक बन जाएगी? और उसके बाद दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतें जो इंटरेस्टेड हैं, जो एलाइड हैं, जिनके मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो हुकूमतें भी हमास को नजरअंदाज कर देंगी और कहेंगी कि साहब पीएलओ से बात करनी चाहिए। इवन ये कि पीएलओ खुद हमास के ऊपर हुए इस हमले की मुजाहिमत कर रहा है और उसके उसके खिलाफ वो है, उसके बयानात आए हैं, लेकिन जो पार्टी है जो पिट रही है, जिनके ऊपर रॉकेट दाग रहे, उनकी तो खाली नींदें हराम हो रही हैं, इनके जानों का तलाफ हो रहा है। बान की मून साहब की समझ में नहीं आता कि नींद का हराम हो जाना एक छोटा मसला हो सकता है, लेकिन जान से गुजर जाना उससे बड़ा कहीं एक मसला है। बान की मून को नींद हराम होने की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की जाने जा रही हैं, बिजली चली गई है, दवा नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है? ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार, इनकी आंखें जब गजा की तरफ फिरती है तो ये बंद क्यों हो जाती है, ये समझने की जरूरत है सारी दुनिया को। और कब तक ये आंखें आखिर बंद रहेंगी कि 15 लाख 16 लाख लोग वहां पर एक मुफलिसी के आलम में, एक ओपन जेल में बंद है, और तमाम इंसानी हकूक के यूनाइटेड नेशंस के ये इदारे आज तक एक लफ्ज नहीं बोले 6 साल में, तो जो इदारे 6 साल इन हमास के में बेकसूर कैदियों के लिए एक लफ्ज ना बोले हो, उस यूनाइटेड नेशंस पे कैसे एतमाद करके कहा जा सकता है कि इस जंग के मौके पर आप जो कुछ भी वो कहेंगे उसमें जरा सा भी कुछ जो है वो गैर जानबदार बात होगी? इसलिए बान की मून साहब का ये बयान जो उन्होंने कल दिया है, ये भी हमारे लिए काबिल हैरत नहीं है, क्योंकि जो सैकड़ों रेजोल्यूशंस इसराइल के सिलसिले में आज तक पास किए हैं यूनाइटेड नेशन में, उनमें से एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसराइल ने हमेशा हठधर्मी करके उन रेजोल्यूशंस को पाबाल किया है। खुद इस जंग के मौके पर उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन के मुंह पे तमाचा मारा है, ये जो मीडिया की बिल्डिंग है उसके ऊपर हमला करके, यूनाइटेड नेशंस का खुला हुआ ये रेजोल्यूशन है कि आलम जंग में भी जो मीडिया के लोग जाएंगे तो उनको अमान हासिल रहेगा और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसका वॉयलेशन क्या, इसराइल ने खुद इसी जंग में, इसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, तो वो यूनाइटेड नेशंस जो अमेरिका के पैसों से चलती हो, वो इसराइल की हामी ना होगी तो किसकी हामी होगी? यकीनी तौर पर वो मजलूमियत की हामी नहीं है, वो जालिम की हामी है। और मैं ये महसूस करता हूं अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया की वो तमाम अकवाम जो जुल्म के खिलाफ लड़ रही हैं, जो इस्तमारियत के खिलाफ लड़ रही हैं और जो जायोनिज्म के खिलाफ लड़ रही हैं, उन तमाम अकवाम को इकट्ठा होकर यूनाइटेड नेशंस के बायकॉट का ऐलान करना चाहिए। ईरान को भी उसमें पहल करनी चाहिए, मिस्र को भी आगे आना चाहिए, तुर्की को भी आगे आना चाहिए, वेनेजुएला को आगे आना चाहिए, ब्राजील को आगे आना चाहिए, क्यूबा को आना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन जैसे इन इंपार्शियल इदारों की हेजमनी को इस दुनिया से खत्म करना बहुत जरूरी है। इसराइल का मसला भी उसी वक्त तक इसराइल और फलस्तीन हल नहीं होगा जब तक हम यूएस, यूएन और इसराइल, इन तीनों को एक साथ लेकर हम इनकी हेजमनी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशंस का एक किरदार जो वो एक पेरेंटल रोल प्ले करता है सारी दुनिया में कि हम सरपरस्त हैं दुनिया के, उसके उस किरदार की कलई खोली जानी चाहिए सारी दुनिया में और उसको खत्म किया जाना चाहिए, दुनिया के इसमें ये किरदार निभाने से रोका जाना चाहिए। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस कोई सरपरस्ताना रोल अदा नहीं करता, बल्कि अमरीका का हलीफ की हैसियत से वो एक रोल प्ले करता है और खुलेआम दर्राना अब इस बात का ऐलान किया जाना चाहिए बगैर किसी मसलहत और किसी डिप्लोमेसी के कि यूनाइटेड स्टेट्स अब मजलूमों का हमदर्द नहीं है, मजलूमों का तरफदार नहीं है, वो जालिमों के साथ खड़ा है। इसलिए उसकी अहमियत और उसकी वजह तासीस अब खत्म हो चुकी है और लिहाजा यूनाइटेड स्टेट्स को भी अब खत्म हो जाना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, और इसी के साथ हम मंजूर रिजवी साहब के भी शुक्रगुजार हैं और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब के भी। तीनों तजिया निगारों के ख्याल आपने मुलाहजा फरमाया, इसमें दो राय नहीं कि अकवाम मुत्तहदा अब अमरीका के एक हरबे में तब्दील हो चुका है और अक्वाम मुत्तहदा के ओहदेदारों के मुंह से वही अल्फाज निकलते हैं जो अमरीका बोलना चाहता है। और बान की मून साहब ने जो बात कही है कि गजा से इसराइल पर रॉकेटी हमले बंद होने चाहिए, अगर इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा होता कि तल अवीव की जानिब से गजा पर हवाई हमले, गोलाबारी और मिजाइलों की बारिश बंद होनी चाहिए तो किसी हद तक उनकी इस बात की तौजीह हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक तरफा बयान دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے. بہرحال یہ فرض بنتا ہے اسلامی ملکوں کا, اور جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آج اپنے اہم خطاب میں تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کی مدد میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہ کریں. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.